धवला पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर 20। ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सवसाहूणं जय उधरसेनाहो जैन महाकम्मपयडि पाहुडसेलो बुद्धिशिरेणोधरियो समप्यो फुफयंतस। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। अब यहाँ अपना द्वितीय खंड शुरू हुआ है, इसका नाम है खुद्दा बंध, और इस सातवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 176 पर हम आगे 176। मार्गणाओं में हम काल देख रहे थे, बंधकों की बात चल रही है, इसलिए बंधक कहने से 13वें गुण स्थान तक की बात हमेशा बता रहे थे वो। क्योंकि ऐसा अगर हम कहेंगे कि केवल ज्ञानी कब तक रहते हैं तो सादी अनंत काल तक रहते हैं, परंतु केवल ज्ञानी में बंधक कहाँ तक है तो केवल 13वां गुण स्थान लेना चाहिए, ऐसी वो तो बात हमने देखी थी कल। अब यहाँ भव्य मार्गणा की अपेक्षा बात चलेगी। भवियाणुवादेन भव सिद्धिया केवचिरम कालादौ होती, भव्य मार्गणानुसार जीव भव्य सिद्धि कितने काल तक रहते हैं यह सूत्र सुगम है। कहते अनादियो सपज्जवसिदो, जीव अनादि शांत काल तक भव्य सिद्धि रहते हैं। शांत इसलिए लिया कि वो भव्य ने होने योग्य, अब सिद्ध होने पर उनको भव्य नहीं कहेंगे, नहीं समझे? जैसे हमारे यहाँ पद्धत है ना कि लड़की के शादी होने के पहले जब छापते सौभाग्य कांक्षिणी कहते हैं, हाँ, और फिर बाद में क्या कहेंगे उसको, कांक्षिणी कहेंगे कि सौभाग्यवती कहेंगे, सौभाग्यवती कहेंगे, है ना? तो भव्य ने होने योग्य, क्या होने योग्य, सिद्ध होने योग्य। तो सिद्ध होने योग्य कब तक कहेंगे, जब तक सिद्ध नहीं हो गए, यानी अरिहंतों को भी भव्य कहेंगे, जब सिद्ध दशा प्रकट होती है तब वो भव्यत्व वो प्रकट हो गया अभी, तो उसको कहेंगे वो भव्य अभव्य से पार है, अभी हो चुके, अभी होने योग्य नहीं, हो चुके। तो उसके लिए अनादि से वो, क्योंकि भव्यत्व अभव्यत्व बाद में किसी कर्म के उदय से नहीं होता, अनादि से ही पाया जाता है, और जब सिद्ध होने के बाद वो मिट जाता है, इसलिए कहेंगे अनादि शांत, क्योंकि अनादि स्वरूप से आए हुए भव्य भाव का अयोगी केवली के अंतिम समय में विनाश पाया जाता है। विनाश होकर वो सिद्ध दशा प्रकट हो गई, वहां तक है, जहां है वहीं पर विनाश कहेंगे, अयोगी के अंतिम समय तक भव्य है, अब नहीं रहे तो कहेंगे विनाश हुआ। शंका, अभव्य के समान भी तो भव्य जीव होता है, इसलिए भव्य भाव को अनादि अनंत क्यों नहीं प्ररूपण किया? देखो क्या ना क्या कहना चाहते हैं, हमने पहले भी बात देखी थी कि भव्य जीव ऐसे कोई है कि तो अभव्य समान है, कभी मोक्ष जाने वाले नहीं है, इसलिए ये प्रश्न पूछते हैं। उनमें भी अनादि अनंत एक भेद कहो ना, उसका समाधान नहीं, क्योंकि भव्यों में, भव्या में हुआ है, भव्यों में अविनाश शक्ति का अभाव है, अविनाश शक्ति यानी विनाश न हो ऐसी शक्ति नहीं है। अर्थात यद्यपि अनादि से अनंत काल तक रहने वाले भव्य जीव है तो सही, पर उनमें शक्ति रूप से तो संसार विनाश की संभावना है, पॉसिबिलिटी कहते हैं, अविनाश की संभावना नहीं होती, यानी उन संभावना है पॉसिबिलिटी कहेंगे, यानी उनमें शक्ति है कि संसार का अभाव करके मोक्ष चले जाए, इसलिए उसको अनादि शांत कहेंगे भव्यों को। पेज नंबर 176 लास्ट लाइन पर आए हम, शंका पूछते हैं, यहाँ भव्यत्व शक्ति का ही अधिकार है, उसकी व्यक्ति का अधिकार नहीं, यह कैसे जाना जाता है? यानी शक्ति रूप से भव्यत्व की बात कर रहे हैं, ये कैसे जानेंगे? तो कहते समाधान, भव्यत्व को अनादि सपर्यवसित कहने वाले सूत्र की, सूत्र इटसेल्फ कह देता है, वो सूत्र की अन्यथा उपपत्ति बन नहीं सकती, यानी अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो ये सूत्र घटित नहीं हो सकता, तो सूत्र में बताया है उसी का अर्थ है, यहाँ भव्यत्व शक्ति की अपेक्षा बात कर रहे हैं, इसी से जाना जाता है, यहाँ भव्यत्व शक्ति से अभिप्राय है। अब कहते सादियो सपज्जवसिदो, नहीं कहाँ गया, हाँ यही में सादियो सपज्जवसिदो, जीव सादि शांत काल तक भव्य सिद्धिक रहते हैं। शंका, अभव्य भव्यपने को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भव्य और अभव्य भाव एक दूसरे के अत्यंता भाव को धारण करने वाले होते, यानी भव्य कभी अभव्य नहीं होता, अभव्य कभी भव्य नहीं होता, तो इसको सादीपना कैसे घटित होगा भव्य को, ये प्रश्न यहाँ चल रहा है। इसलिए उनका एक अधिकरण में रहना विरुद्ध है, एक अधिकरण एक ही जीव में, अधिकरण उसका आधार क्या है, एक जीव, तो उसमें एक ही जीव में भव्यत्व और अभव्यत्व दोनों नहीं रखते कि पहले भव्य था बाद में अभव्य हुआ, या पहले अभव्य था बाद में भव्य हुआ, ये नहीं हो सकता। सिद्ध भव्य नहीं होता, क्योंकि जिन जीवों के समस्त कर्माश्रव नष्ट हो गए हैं उनके, यानी सिद्ध भव्य नहीं होता, यानी सिद्ध कैसे है, भव्यत्व से पार हो गए ना, अभी दोबारा वो संसार में लौटेंगे तो हम कहेंगे उनको भव्य, जैसे उपशम श्रेणी से उतरते हुए फिर कुछ शादी हो जाती है कर्मों का बंध, ऐसा सिद्ध होकर फिर संसार में आए तो फिर भव्य शादी हो सकता है, तो आप क्यों कह रहे भव्य को शादी, ये कहने उनका प्रश्न ये है, उनके कर्माश्रव चाहिए, कर्मश्राव नहीं, कर्माश्रवों की पुनः उत्पत्ति होने में विरोध आता है, यानी जिन्होंने आठों ही कर्मों का संपूर्ण नाश किया है ऐसे सिद्ध भगवान, फिर उनके कर्म का आश्रय हो जाए ये कैसे होगा, क्योंकि उसके बिना वो नीचे कैसे आएंगे फिर संसार में, अतः भव्य भाव सादी नहीं हो सकता, ये प्रश्न है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि पर्यायार्थिक न्याय के अवलंबन से जब तक सम्यक्त्व ग्रहण नहीं किया तब तक जीव का भव्य भाव अनादि अनंत रूप है, यानी उसने सम्यक तो प्राप्त किया तो भव्यत्व वो प्रकट हो गया ना उसका, यानी अभी निश्चित रूप से मोक्ष जाने वाला ही है, उसकी अपेक्षा से कहते। देखो अपेक्षा व अन्य अन्य कथन आता है, कहीं कोई कथन आता है तो उसकी हमें अपेक्षा ठीक से ध्यान में लेनी चाहिए, यानी जब तक सम्यक तो नहीं ग्रहण करता तब तक उसका भव्य भाव अनादि अनंत रूप है, क्योंकि उसका संसार अंत रहित है, किंतु सम्यक्त्व के ग्रहण कर लेने पर अन्य ही भव्य भाव उत्पन्न हो जाता है, अन्य ही भव्य भाव, ने पहले तो भव्य कहेंगे उसको पर क्योंकि पारिणामिक है, परंतु अन्य ने अभी वो प्रकट हो गया है, अभी अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक संसार में नहीं रुकेगा, क्योंकि सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाने पर फिर उसके केवल अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र काल तक संसार का अवस्थान रहता है, यानी जब तक सम्यक तो नहीं प्राप्त किया तब तक क्या कहेंगे उसको, अनादि अनंत है उसका संसार, प्राप्त किया अभी उसका किनारा आ गया। इसी प्रकार एक समय कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन संसार वाले, दो समय कम उपार्ध पुद्गल परिवर्तन संसार वाले आदि जीवों के पृथक पृथक भव्य भाव का कथन करना चाहिए। बापरे, यानी भव्य भाव भी अलग अलग कथन करेंगे, क्योंकि सम्यक तो ग्रहण किया, संयम धारण किया, अंतर्मूर्त में मोक्ष चले गए, तो उसका भव्य भाव किस टाइप का होगा, वो अंतर्मूर्त वाला होगा, ये भव्य भाव के इतने भेद करेंगे एक एक समय के डिफरेंस से, कहां तक? ये उपार्ध पुद्गल परावर्तन तक, उपार्ध ने कुछ कम, यानी मैक्सिमम लिया हूं ना अर्ध पुद्गल परिवर्तन, फिर एक समय कम, दो समय कम, ऐसा लौट आओ नीचे अंतर्मूर्त तक। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि भव्य जीव साधि शांत होते हैं, उनका जो साधि शांत काल है वो बताना है था अर्ध पुद्गल परावर्तन से लेकर, ये तो मैक्सिमम, और मिनिमम होगा अंतर्मूर्त। अब पूछते हैं, अभव्य सिद्धियां केवल चिरम कालादो होती, जीव अभव्य सिद्धि कितने काल तक रहते हैं, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? हाँ मनीषा बेन, अनादियन, बहुत अच्छा, अभी हमने पेज भी नहीं पलटा, पहले अपना उत्तर अपने मन में तैयार होना चाहिए। 178 पृष्ठ पर आते, यह सूत्र सुगम है। अनादियो अपज्जवसिदो, जीव अनादि अनंत काल तक अभव्य सिद्धिक रहते हैं। शंका, अभव्य भाव जीव की एक व्यंजन पर्याय पने को है, इसलिए उसका विनाश होना चाहिए, नहीं तो अभव्यत्व के द्रव्यपने का प्रसंग आ जाएगा। ये लंबे काल तक पर्याय चलती उसको व्यंजन पर्याय कहेंगे, यहाँ प्रदेशत्व गुण की बात मत लेना, यानी अभव्य वो पर्याय की अपेक्षा, पता है ना, पर्याय में वो सिद्धपना प्रकट नहीं करने वाला, तो इसको अनादि अनंत कहते हो तो वो द्रव्य कहे, द्रव्य हो जाएगा, ये उनका कहना है। समाधान, अभव्य भाव जीव के व्यंजन पर्याय भले ही हो, पर सभी व्यंजन पर्याय का नाश होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं? तो मनुष्य पर्याय है, देव पर्याय, इनको भी कहते हैं, चिरकाल तक, लंबे काल तक वैसी की वैसी है, उसको भी व्यंजन पर्याय कहने में आता है। अभव्यपना कायम रहता है, इसलिए अभव्य है वो, इस वो पर्याय की बात है ना, पर्याय में वो अभव्य है, इसलिए उसको व्यंजन पर्याय कहा। तो समाधान में कहते हैं, भले वो व्यंजन पर्याय है, पर सभी व्यंजन पर्यायों का नाश होना चाहिए, कोई नियम नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से एकांतवाद का प्रसंग आता है, यानी सर्वथा हो जाती है ना बात, वो एकांतवाद। ऐसा भी नहीं है कि जो वस्तु विनष्ट नहीं होती वह द्रव्य होती है, क्या कहा, जिसका विनाश नहीं होना वो द्रव्य ही, ऐसा कैसे कहेंगे? क्योंकि जिसमें उत्पाद द्रव्य और व्यय पाए जाते हैं उसे द्रव्य रूप से स्वीकार किया गया है। द्रव्य का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। यहाँ अभव्यत्व में वो बात घटित नहीं हो रही है, इसलिए ये द्रव्य नहीं हो सकता, उसको अनादि अनंत कहने पर भी। यहाँ अभव्य भाव को व्यंजन पर्याय कह दिया। व्यंजन पर्याय की एक परिभाषा ऐसी होता है ना, चिरकाल तक जो चले उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं, और एक परिभाषा ऐसी है प्रदेशत्व गुण के पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं, दोनों ही पद्धति से उसका कथन आता है। ये द्रव्य संग्रह में भी ऐसी परिभाषा है, लंबे काल तक चलती उसको व्यंजन पर्याय कहेंगे। अब आगे बढ़ते हम, ये तो भव्य अभव्य की बात हो गई, अभी सम्यक्त्व मार्गणा की बात चलेगी, तो सम्यक्त्व मार्गणा के भेद बताएंगे प्रेरणा बिना, सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा भेद जीवों के, वो तो संयम मार्गणा हो गई। अरे वो संयम की बात क्यों कर रहे आप, आज गड़बड़ी बचा। हाँ, मिथ्यात्व सासाधन मिश्र, ये तीन हो गए। फिर जो सम्यक दृष्टि है उसके तीन भेद, औपशमिक सम्यक दृष्टि, शाउपशमिक और शायिक, ख्याल में? कभी सम्यक तो इन जनरल बात करेंगे, कभी उसके भेद भी करेंगे। तो मूल में सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा छह भेद है। सम्यक तो के प्रकार कितने? तो तीन है, पर सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा, क्योंकि जिसको सम्यक तो नहीं, ये हमने सम्यक तो एक क्राइटेरिया लगाया है, तो अभी उसके भेद करेंगे। तो जो सम्यक दृष्टि नहीं है वो क्या है? तो कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई सासाधन है, कोई मिश्र वाले है, तीन गुणस्थान है ना। पहले सम्यक की अपेक्षा लगाई हमने, तो अपेक्षा ही नहीं जिसको नहीं है, उसकी बात नहीं है। अभी उनके क्या है कंडीशन, मिथ्या तो मिथ्या दृष्टि है ऐसा कहेंगे उनके लिए। देखो मार्गणा में क्या है, जैसे हमने क्या कहा वेद वाले थे तो अपगत वेदी वाले भी थे कि नहीं थे, तो उसमें क्या अपेक्षा ली, वेद की अपेक्षा लगाई, कषाय वाले अकषायी, हाँ जो कोई अपेक्षा लगाते हैं वैसे उसका क्लासिफिकेशन होता है। हम यहाँ संसारी जीवों को ही नहीं, यहाँ पर 13वें गुणस्थान तक की बात चल रही है। तो सम्मतानुवादेन सम्मादिट्ठि केव चिरम कालादो होती, सम्यक्त्व मार्गणानुसार जीव सम्यक दृष्टि कितने काल तक रहते हैं, एक जीव की अपेक्षा बात चल रही है ना यहाँ पर। अभी एक ही जो हमने वो पहले उन्होंने घटित किया था, यह कौन सा सम्यक तो ये नहीं बताए, केवल सम्यक दृष्टि बताए, जो हमने अभी निबोधिक यानी मतिश्रुता अवधि ज्ञान में देखा था वैसा बताएंगे यहाँ पर। अब यहाँ आगे भी वो सम्यक दृष्टि रहता ना, वो कहाँ मतिश्रुत को तो 12वें गुणस्थान तक लेना था और इनको तो 13वें के अंत तक लेना है। तो जघन्य न अंतमूर्तम, जघन्य से अंतर्मूर्त काल तक जीव सम्यक दृष्टि रहते हैं, क्योंकि जिसने अनेक बार सम्यक्त्व पर्याय प्राप्त कर ली है ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव के, जिसको के दृष्ट पथ कहते हैं, जिन्होंने मार्ग देख लिया है, अनेक बार प्राप्त किया है तो वो झट से फिर से दोबारा प्राप्त कर सकता है, तो उसका मिनिमम काल फिर गिर जाएगा, मिथ्यात्व में चला जाएगा। तो जिसने अनेक बार सम्यक्त्व पर्याय प्राप्त कर ली है ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव के सम्यक्त्व को प्राप्त कर जघन्य से अंतर्मूर्त काल तक रहकर मिथ्यात्व को जाने पर सम्यक दर्शन का अंतर्मूर्त काल प्राप्त हो जाता है। अनेक बार प्राप्त कर लिया है, नहीं वो तो वेदक सम्यक दृष्टि लेना चाहिए यहाँ पर। अब उत्कृष्ट बताएंगे, उक्कसेन छावट्ठी सागरोपमानी सादिरेयानी, उत्कृष्ट से सातिरेक 66 सागरोपम काल तक जीव सम्यक दृष्टि रहते हैं, उसका उदाहरण स्पष्टीकरण बताएंगे। क्योंकि किसी जीव ने तीनों ही करण करके प्रथम सम्यक्त्व ग्रहण किया, यानी प्रथमोपशम, प्रथम सम्यक्त्व यानी प्रथमोपशम, और अंतर्मूर्त काल तक रहकर वेदक सम्यक्त्व को धारण कर लिया। यहाँ हमें डिफरेंसेस नहीं करना, ये वेदक है ये औपशमिक है, वो तो बाद में कहेंगे, अभी सम्यक दर्शन है उसको, यानी उसको पहले औपशमिक का अंतर्मूर्त फिर वेदक सम्यक्त्व में रखना उसको। वहाँ तीन पूर्व कोटि अधिक 42 सागरोपम काल व्यतीत करके, ये 42 क्यों लिया बोलो अश्विन भाई, उसमें बोलो 42 का अर्थ क्या है, अभी संयम में नहीं रहा, चौथे और पांचवे में रहने का उत्कृष्ट काल लिया, क्योंकि क्षयिक के बाद फिर और उसको 24 में, क्योंकि 42 उसने प्राप्त कर चुके हैं, ये पहले 20 और 22 की बात उन्होंने बताई ना, घटित करके उन्होंने बताई थी, वो दो यानी 66 सागर और फिर चार पूर्व कोटि 164 पेज पर था। तो वहाँ तीन पूर्व कोटि अधिक 42 सागरोपम काल व्यतीत करके उन्होंने ऐसा देखा था, देवमिया नरक में वो प्रथम उपशम प्राप्त किया, फिर अंतर्मूर्त काल तक वेदक रहा, फिर पूर्व कोटि वाले मनुष्य में आया, फिर 20 सागर की देवायु, फिर मनुष्य पूर्व कोटि वाला, फिर 22 की ये 42 हुए, फिर मनुष्य में आला आ गया ये तीसरी पूर्व कोटि, क्षायिक समय तो प्राप्त किया, वो मनुष्य में उन्होंने क्षायिक समय तो प्राप्त किया और 24 सागरोपम आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात पूर्वकोटि आयु स्थिति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होकर आयु के अंत समय में अबंधक भाव प्राप्त कर लिया, अबंधक भाव ने 14वें गुणस्थान में गया। ऐसे जीव के सम्यक दर्शन का सातिरेक यानी चार पूर्वकोटि अधिक 66 सागरोपम प्रमाण काल प्राप्त हो जाता है, यह हमने देखा था। अब यहाँ बाद में अबंधक होता है इसलिए उसको लिमिट बताएं। हम ये अबंध की बात की नहीं बात करेंगे, केवल इतना ही पूछते जो सम्यक दर्शन यानी सम्यक दृष्टि कितने काल तक रहता है, तो आप क्या कहेंगे? सम्यक दृष्टि, आप जरा शांति रखो, सम्यक दृष्टि कितने काल तक रखते रहता है जीव? क्या बोलो? सादी अनंत काल तक, सादी अनंत काल तक। वो तो सिद्ध भी समय दृष्टि है कि नहीं है? यहाँ बंधकों की चर्चा है इसलिए उसको रुकाया 13वें के अंत तक। ख्याल में आई बात? समय दृष्टि कितने काल तक रहेगा? तो सादी अनंत, क्षायिक समय दृष्टि सादी अनंत, केवल ज्ञान सादी अनंत। परंतु यहाँ हमारी अपेक्षा क्या है? बंधकों की चर्चा चल रही है इसलिए उसको हम शांत करते थे, यानी सम्यक दर्शन का अंत बताया, क्योंकि आगे वो बंधक नहीं है। देखो अभी यहाँ पढ़ते हैं, देखो आगे अभी क्षायिक सम्यक दृष्टि की बात पूछ रहे। खये सम्मा इट्ठी केवचिरम कालाद होती, जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि कितने काल तक रहते हैं? यह सूत्र सुगम है। जघन्येन अंतोमूर्तम, जघन्य से अंतर्मूर्त काल तक जीव क्षायिक समय दृष्टि रहते हैं। देखो इसका अर्थ क्या है? क्षायिक समय दर्शन प्राप्त किया, अंतर्मूर्त में श्रेणी चढ़ के 13वां गुणस्थान भी पार किया, ये अंतर्मूर्त। अभी धौला निकाल के ये अकेला एक वाक्य पढ़ेंगे कोई तो क्या उसका अर्थ हो जाएगा? देखो क्षायिक समय दर्शन भी अंतर्मूर्त में कलाश होता है, ऐसा होगा कि नहीं? जिसको रेफरेंस क्या है, विषय क्या चल रहा है, किसके बारे में बता रहे, ये सब जानना आवश्यक है। कोई पुस्तक का कोई पेज नंबर लाइन देख के उसको ऐसे बीच में ही कुछ लाइन निकाल कर उसका अर्थ नहीं हो सकता। समझ में आई बात? क्योंकि वेदक समय दृष्टि जीव के दर्शन मुनि का क्षपण करके क्षायिक सम्यक्त को उत्पन्न कर, उत्त लगा उत्पन्न कर, जघन्य काल से अबंधक भाव को प्राप्त होने पर अंतर्मूर्त काल पाया जाता है। यानी कोई वेदक समय दृष्टि था, मुनिराज थे, उन्होंने क्षायिक समय तो प्राप्त किया और अंतर्मूर्त में श्रेणी चढ़ी, क्षपक श्रेणी, और फिर 13वां गुणस्थान भी अंतर्मूर्त में पार कर दिया, तो उसका पूरा मिलकर क्षायिक समय तो का काल जो है बंधकों की बात चल रही है, अंतर्मूर्त होगा 14वें में आ गया, अबंधक हो गया। अब उक्कस न 33 सागरोपमानी सादी रे, यानी उत्कृष्ट से सातिर 33 सागरोपम प्रमाण काल तक जीव क्षायिक समय दृष्टि रहते हैं। अभी उसको घटित करके, क्योंकि जब 24 कर्मों की सत्ता वाला, 24 कर्मों की सत्ता वाला का अर्थ क्या है? 24 के ये मोहनीय की सत्ता वाला की बात है, तो 24 कब होगी? अनंतानुबंधी केवल विसंयोजित हो गए, मिथ्या तो है अभी बाकी, सत्ता की बात है। तो जब 24 कर्मों की सत्ता वाला यानी अनंतानुबंधी बिना, मोहनीय जो है अनंतानुबंधी बिना 24 हो जाते हैं। देखो मोहनीय की सत्ता जुदी जुदी बताओ आप, एक तो अनादि से 26 की सत्ता वाला होता है, जब समय दर्शन हो जाता है तो 27 की हो जाते हैं, जब सम्यक प्रकृति की उद्वेलना हो जाती तो 27 हो जाता है, और सम्यक हाँ मिश्र की भी हो जाती है तो 26 अनादि जैसा। अब 26 के बाद पॉसिबिलिटीज क्या क्या है बोलो? 25 वाला कोई होगा क्या? अकेला मिथ्यात्व गया और अनंतानुबंधी ऐसा नहीं हो सकता, तो जाएगा तो अनंतानुबंधी 4 जाएंगे। समझ में? तो 28 में से 4 निकालना है, 26 में से 4 नहीं निकालना, तो 24 हो सकती है। फिर जब मिश्र की सपना हो गई तो 23 हो सकते है, फिर मिश्र की भी गई तो 22 हो गए, और फिर सातों कर्म गए, क्षायिक समय दृष्टि हुआ तो 21 से सत्ता वाला हो जाए, 28 में से 7 गए। चल में बात? 17 वाला कैसे होगा? आठ एक साथ छह हो जाते हैं। हाँ अभी आगे देखते देखो यहाँ क्या कहते हैं, 24 कर्मों की सत्ता वाला सम्यक दृष्टि, यानी जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है ऐसा जीव कौन है, देव या नारकी। ये नारकी भी अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर सकते, सातवें नरक का नारकी भी सम्यक दृष्टि होना चाहिए, चौथे गुणस्थान वाला इसके उसके लिए भी तीन कर्ण परिणाम में वो करता है। ऐसा जीव पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न होकर, अभी वो तो छठे से ही आ सकता है ना, सातवें वाला भले सम्यक तो प्राप्त करे अनंतानंदी विसर्जना करे फिर तो मिथ्यात्व में जाने वाला है, उसकी बात यहाँ नहीं लेनी है। वो विसर्जना करके वो मनुष्य में आया हुआ है, पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्य में आ गया, गर्भ से 8 वर्ष वो अंतर्मूर्त अधिक हो जाने पर, ये तो हमेशा की कंडीशन जो है, शाइक के लिए भी वही कंडीशन है, वो वेदक सम्यक को लेकर आया हुआ है जहां अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो गई। पहले विसंयोजना उस भाव में क्यों कराए उसको, क्योंकि क्षायिक होने के लिए वो तीन करण पहले अनंतानुबंधी के करने पड़ते हैं और बाद में क्षपणा के लिए तीन करण और करने पड़ते हैं, तो विसंयोजना वाला काल पहले ही भाव में बिता दिया उसने, यहाँ अर्लीएस्ट क्षायिक करेगा इसलिए। तो गर्भ से 8 वर्ष व अंतर्मूर्त अधिक हो जाने पर क्षायिक सम्यक को स्थापित करता है और कुछ कम पूर्व कोटि तक रहकर 33 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न होकर, फिर वो मुनि है वो सब सब समझ लेना जो जो कंडीशंस है वो, पुनः पूर्व कोटि आयु स्थिति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त मात्र संसार काल के अवशेष रहने पर अबंधक भाव को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पूर्व कोटि आयु है तो भले 13वां गुणस्थान कभी भी प्राप्त हो जाए उससे कुछ मतलब नहीं है, उसका क्षय भी चल रहा है और बंधक भाव भी चल रहा है, आयु के अंत में 14वें में चला जाएगा तब वो अबंधक भाव को प्राप्त हो जाएगा, यानी ये पूर्व कोटि में अंतर्मूर्त कम किया और पहले वाले पूर्व कोटि में से 8 वर्ष और अंतर्मूर्त कम कर दिया, इसलिए कुछ कम दो पूर्व कोटि और 33 सागर। फिर से क्या क्या किया उसने, अनंतानुबंधी की विसंयोजना देव या नारकी ने की और वो सम्यक्त्व लेकर मनुष्य में उत्पन्न हुआ, वेदक सम्यक्त्व 8 वर्ष और अंतर्मूर्त के बाद उसने क्षपणा कर दी, यानी वो क्षायिक हो गया, उसका क्षायिक का काल चालू हो गया, शादी हो गई ना उसकी, अब वो पूरी पूर्व कोटि रिमेनिंग पूर्व कोटि अंत में वो तो मुनि होकर 33 सागर की देवायु बांधकर देव में गया और वहां से मनुष्य में आ गया, वहां पर भी पूर्व कोटि वाला भाव धारण किया और आयु के अंत में 14वें में पहुंच गया। देखो गर्भ से 8 वर्ष अंतर्मूर्त अधिक हो जाने पर क्षायिक सम्यक्त्व को स्थापित करता है और कुछ कम पूर्व कोटि तक रहकर 33 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न होकर, पुनः पूर्व कोटि आयु स्थिति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त मात्र का संसार काल के अवशेष रहने पर अबंधक भाव को प्राप्त हो जाता है, यानी 14वां गुणस्थान, तब उसके क्षायिक सम्यक्त्व का काल दो अंतर्मूर्त से अधिक 8 वर्ष कम दो पूर्व कोटि सहित 33 सागरोपम प्रमाण पाया जाता है, यानी 33 सागर प्लस दो पूर्व कोटि, ये सब ब्रैकेट में रखो प्लस में, दो पूर्व कोटि माइनस 8 वर्ष, या दो पूर्व कोटि रखो 8 वर्ष प्लस अंतर्मूर्त, ये माइनस वाली बात ब्रैकेट में रखो, यानी 33 सागर प्लस दो पूर्व कोटि, इसमें से माइनस क्या करना है इन ब्रैकेट 8 वर्ष प्लस दो अंतर्मूर्त, यानी माइनस की साइन 8 वर्ष के लिए भी लगेगी और अंतर्मूर्त के लिए भी लगेगी, दो अंतर्मूर्त के लिए। हाँ अब वेदक सम्मान इट्ठी केवचिरम कालादो होती, प्रश्न चिन्ह डालो यहाँ पर, जीव वेदक सम्यक दृष्टि कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है, जघन्येन अंतोमुहूर्तम, जघन्य से अंतर्मुहूर्त काल तक जीव वेदक सम्यदिष्टि रहते हैं। वो अंतर्मुहूर्त किसके होता है देखो, क्योंकि जिसने मोक्ष मार्ग देख लिया है, ऊपर प्राकृत में उसको लिया दिट्ठ मग्गस, यानी दृष्ट मार्गी है वो, यानी जिसने रास्ता देख लिया है और बहुत बार देख लिया है। आप किसी का एड्रेस ढूंढना है और आपको मालूम नहीं, किसी नए गांव में गए हो और केवल वो एड्रेस है आपके पास, तो ढूंढने में थोड़ा अधिक समय लगेगा। अब आपके रोज जहाँ रहते हो या बहुत बार जाना आना होता है या जहाँ हमेशा जाना आना रहता है आपका, तो वहाँ तो आपको मालूम है एड्रेस, आपने देख लिया है तो फट से उसको मिल जाता है। ऐसा ही यहाँ मोक्ष मार्ग उसने देख लिया है और बहुत बार प्राप्त किया है। पहली बात आई थी ना, जिसने बहुत बार सम्यक तो ग्रहण करके मिथ्यात्व में ऐसा जीव लिया था, तो जिसने मोक्ष मार्ग देख लिया है ऐसे मिथ्या दृष्टि के, वे मिथ्या हुए मिथ्या दृष्टि के सम्यक तो ग्रहण करके जघन्य से अंतर्मूर्त रहकर पुनः मिथ्यात्व में चले जाने पर वेदक सम्यक्त्व का जघन्य काल अंतर्मूर्त काल प्राप्त हो जाता है। वो समय सार नाटक में आता है ना, वो लोहार के संडासी क्षण में, आग में क्षण में, पानी में, ऐसा कुछ लेते हैं, पर वो उपशम सम्यक्त्व की बात नहीं है, वेदक सम्यक्त्व की हो सकती है। क्षण यानी समय नहीं लेना, वहां अंतर्मूर्त। उक्कस से न छावट्ठी सागरोपमाने, उत्कृष्ट से 66 सागरोपम काल तक जीव वेदक सम्य दृष्टि रहते हैं। एग्जैक्ट साइज कुछ कम यहाँ नहीं डालना, क्योंकि मैंने बताता है आपको बताया था वो कृतकृत्य वेदक सहित वो 66 पूरा हो जाता है, जो बाद में क्षायिक होने वाला है उसी का इतना पूरा काल होगा। जो मिथ्यात्व में आने वाला है वो अंतर्मूर्त तो पहले आएगा ही आएगा, क्योंकि एक जीव उपशम सम्यक्त्व से वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त होकर, क्योंकि उसको वेदक सम्य दृष्टि बनाना है ना, इसलिए उपशम से वेदक प्राप्त होकर शेष गुज्जमान आयु से कम, अच्छा उन्होंने वो तो 66 सागर घटित कर लिया है, शेष गुज्जमान आयु से कम 20 सागरोपम आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ। वो पहले उसमें वो तो पूर्व कोटियां बढ़ाई थी, यहाँ तो केवल वेदक का काल घटित करना है उनको, तो जो मनुष्य आयु माइनस करते करते उतने देवों में घटित कर ले, केवल 66 सागर गिनाना है उनको। फिर वहां से मनुष्यों में उत्पन्न होकर पुनः मनुष्य आयु से कम 22 सागरोपम आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ। पुनः वहां से मनुष्यों में आकर बुज्जमान मनुष्य आयु से तथा दर्शन मुख के क्षपण में जितना काल लगना संभव है उतने काल प्रमाण आगे भोगे जाने वाली मनुष्यायु से कम 24 सागरोपम आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ। वहां से पुनः मनुष्य गति में आकर वहां वेदक सम्यक्त्व काल के अंतर्मूर्त मात्र रहने पर दर्शन मुख के क्षपण को स्थापित कर कृतकरणीय हो गया। कृतकरणीय का अर्थ क्या है? देखो जब दर्शन मोह की क्षपणा करता है तो पहले अनंतानुबंधी की विसर्जना करता है, फिर तीन करण परिणाम के द्वारा मिथ्यात्व के परमाणु सारे यानी संक्रमित होकर नष्ट हो जाते हैं। सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप होते हैं, फिर सम्यक मिथ्यात्व भी सम्यक प्रकृति रूप होकर नष्ट हो जाता है, और फिर उसके 8 वर्ष प्रमाण सम्यक प्रकृति रहती है, उसमें भी बहुत सारे स्थिति कांड होते 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 अंतर्मूर्त प्रमाण स्थिति शेष रह जाती है। वहां तक उसका वो अनिवृत्तिकरण का काल चल रहा था, अभी तीन करण समाप्त हुए और ये अंतर्मूर्त प्रमाण सम्यक प्रकृति के निषेक बाकी है। अब वो एक एक समय में एक एक वो निषेक गलकर वो वहां पर उसका क्षय हो जाने वाला है, तब उसको कहेंगे कृतकृत्य वेदक। यहाँ कृतकरणीय कहा, करने जैसा कार्य कर लिया है, हाँ यानी करण तो समाप्त हो गए वहां पर उसके। यानी यहाँ मनुष्यायु को कम करते करते 20, 22 और 24 सागर घटित किए, ये बताना था, इसलिए 66 सागर घटित करना था। वही तो मैंने अनिवृत्तिकरण समाप्त होने पर वो कृतकृत्य वेदक हो जाता है। क्षायिक का प्राप्त होने के पहले, हाँ क्षायिक कब कहलाएगा, कृतकृत्य के बाद। हाँ तो उसके एक समय नहीं, अंतर्मुहूर्त पहले कृतकृत्य वेदक। हाँ कृतकृत्य वेदक में अभी उसके सत्ता में मिथ्या तो भी नहीं है और समय मिथ्या तो भी नहीं है। मुझे लगा आप क्षायिक करने के पहले की बात करते। नहीं, जब वो अंतिम सम्यक प्रकृति का निषेक खिर जाएगा तो वो क्षायिक कहलाएगा। हाँ देखो यानी वो 20 22 और 24 उन्होंने घटित करके दिखाए। वहां से पुनः मनुष्य गति में आकर वहां वेदक सम्यक तो काल के अंतर्मूर्त मात्र रहने पर दर्शन मौके क्षपण को स्थापित कर कृतकरणीय हो गया। ऐसे कृतकरणीय के अंतिम समय में स्थित जीव के वेदक सम्यक्तों का 66 सागरोपम मात्र काल पाया जाता है। वो अंतिम समय में वाला वो वाला ले लिया वहां पर। यहाँ पूर्व कोटिया नहीं गिना है क्योंकि 66 सागर उनको बताना था। वहां उन्होंने क्यों लिया, वहाँ हमेशा उसके कम लिया। जब देखो पेज नंबर 164 निकालो, यानी उन्होंने वो तो 66 जुदे जुदे गिनी थी। देखो 164 पेज पर नीचे का पैराग्राफ, पहले देव और नारकी ने उपशम सम्यक्त के साथ मतिशुता अवधि ज्ञान पाया था, फिर वेदक सम्यक्त होकर अंतर्मूर्त रहा, फिर अंतर्मूर्त से हीन पूर्वकोटि मनुष्य में उत्पन्न हुआ। वो अंतर्मूर्त कम कर दिया क्योंकि केवल पूर्वकोटि या चार गिनानी थी उनको। फिर 20 सागरोपम वाला देव में हुआ, फिर पूर्वकोटि आयु वाली मनुष्य दूसरी पूर्वकोटि, फिर 22 सागरोपम देव में, ये दो पूर्वकोटि के बाद यह उन्होंने क्षायिक का प्रारंभ किया। क्षायिक का प्रारंभ किया वहां तो सम्यक्त का काल मैक्सिमम गिनना था। पूरा 66 सागर वेदक का काल गिनकर क्षायिक का नहीं गिनाया है उन्होंने, 20 और 22 42 सागर ही गिने हैं, ख्याल में ना। इस तरह से अगर लेते हैं तो उसमें वो चार पूर्वकोटियां इंक्लूड होती है। फिर से यहाँ वेदक का जब हम सम्यक्त्व में रहने का उत्कृष्ट काल चार पूर्वकोटि और 66 सागर गिनते हैं। कैसे गिना उन्होंने, पहला अंतर्मूर्त देव में बिताया था, फिर जो पूर्वकोटि ली है उसमें से अंतर्मूर्त कम करके उतनी आयु लेकर आया है, यानी वहां और यहां मिलकर पूरे एक पूर्वकोटि हो गई, फिर 20 सागर वाला देव, फिर पूर्वकोटि, फिर 22 सागर वाला देव, फिर पूर्वकोटि में आया है। अभी उसने वेदक के साथ कितने, दो पूर्वकोटि और 42 सागर ही बिताया है। उसका 66 सागर काल होता अगर वेदक ही रहता तो। अब उसने क्षायिक प्राप्त किया है, जो जब कभी किया उससे कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ फिर वो पूर्वकोटि गिननी, ये तीसरी पूर्वकोटि। अब वो 33 सागर में गया, सॉरी 24 सागर में गया और फिर मनुष्य हुआ। अब वो क्षायिक के साथ उसने इतना किया ना, दोनों ओर पूर्वकोटि और बीच में 33 सागर। इस तरह सम्यक्त का उत्कृष्ट काल जब लेना है तब चार पूर्वकोटि और 66 सागर लेते। अकेले वेदक में रखना है तो 66 सागर एग्जैक्ट। ऐसा नहीं कि पहले प्रश्न भी पूछा था, वेदक में 66 सागर रखो और बाद में क्षायिक उत्पन्न करो और फिर उसको और 33 सागर में घुमाओ, तो कहते ऐसा नहीं हो सकता, फिर उसके ये ऐसे ज्यादा भाव नहीं हो सकते। ये भी प्रश्नोत्तर हुआ था अपना। ये सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल चार पूर्वकोटि और अकेले वेदक सम्यक्त्व का काल 66 सागर, केवल 66 सागर प्लस 66 सागर, उसमें ऑप्शन एक शायक सब इंक्लूड कर दिए थे। अभी वो घटित करके बताए ना 164 पुष्प पर, और अकेला वेदक लेना है तो उसमें वो पूर्व कोटि देव की आयु में गिनना है उसके एग्जैक्टली 66 साल। हाँ वो अलग अलग हो सकता है, वो तो फॉर एग्जांपल अभी नरक में से भी आया हुआ, नरक में भी अगर कुछ सागर बिताता है 22 सागर लेकर वहां से गिन सकते हैं, किसी भी तरह उसके 66 सागर हो गए। जरा उसमें बोलो
जो 164 पे देखता है वहाँ पे तीसरा भाव में वो साइक नहीं करेगा तो वो शायद तीसरा गुणस्थान में या पहले गुणस्थान में जाएगा देव के देव का भाव में, कैसे ले सकते हैं?
हाँ अगर उसको मिथ्या, हमारा विषय वो नहीं है,
नहीं इसे मैं पूछ रहा हूँ जानने के।
हाँ जो 66 सागर में एक अंतर्मूर्त पहले वो तो समय मिथ्यात्व में जा सकता है, मिथ्यात्व में भी जा सकता है उसमें क्या बात है, पर मिथ्यात्व में जाने वाले के फिर वो 266 सागर, क्योंकि मिथ्यात्व का अंतर वहां घटित करना था, इसलिए जो तीसरे में भी आ सकता है मिथ्यात्व में भी जा सकता है, पर जो पूरा 66 सागर तभी घटित करता है जो कृतकृत्य वेदक सहित वाला काल गिनेंगे तो, यानी उसने ही काल ने उसने क्षपणा की क्रिया प्रारंभ कर दिया ऐसा जीव ले सकते, तभी वो 66 सागर पूरा गिन सकते उसको। ये आज ये जरा क्लैरिटी ज्यादा हो गई, नहीं तो हमेशा कहते कभी चार कोटि पूर्व कोटि लेते हैं कभी नहीं लेते, ये क्या बात है? सम्यक्त को गिनना है तो 42 सागर के बाद उसने वो तीसरे पूर्व कोटि में क्षायिक किया था, और उसके बाद उसने वो जो देव का रिमेनिंग 66 सागर में जो रिमेनिंग थे उतनी देव की आयु की, अगर वहां लास्ट में 33 रखना है क्षायिक के बाद तो पूर्व में तो और 33 में उसको इंक्लूड करो ना, 3 सागर 30 सागर कुछ भी ऐसा हम घटित कर सकते हैं अलग अलग पद्धति से, पर वो 42 और वो इस तरह से थोड़ा उसको जो बाद में 24 लिए, बाद में वो 33 वाला नहीं लिया क्योंकि वैसे वो 66 सागर और कुछ चार पूर्व कोटि इतना ही हो सकता है। शाइक का मैक्सिमम अगर लेना है आपको 33 सागर और कुछ तो पहले वाला काल और कम कर दो वेदक वाला, तो शाइक के साथ 33 सागर बाद घटित होगी। जैसे यहाँ 20 और 22 लिए, 20 और 22 पहले लिए थे और बाद में 24 लिए, अब बाद में 33 रखना है उसको, तो पहले दो भव है उसके दोनों मिलकर 33 वाला कर दो, इस तरह वो घटित हो सकता है।
तद्भव मोक्ष का भी होगा
क्या? क्या
यहाँ पे ये जो 66 लास्ट भाव में उसने सपना किया है,
देखो यहाँ उसने एक सपना कब की? लास्ट बट वन में की नहीं,
लास्ट में की
एक मिनट पृथकरणीय वेदक समित्व का 66 सागर उपम हो जाता है। देखो कितने उसने ऑलरेडी 66 सागर करके हाँ कर लिए ना,
तो ये लास्ट भाव में तो ये तद्भव मोक्ष का भी होगा।
उसके बाद उसके उसके 2.5 सागर वगैरह 2 सागर की भी आयु बांध सकता है बाद में, ये पहले हमने देखा था, हो सकता है एक देव देव का बहु हो जाए, ये हो सकती है पर छोटी आयु वाला होगा, ये हमने कहाँ देखा था? महाबंध में देखा था क्या?
हाँ
यानी क्षायिक होने के बाद बड़ी आयु नहीं लेना देव की, छोटी आयु लेना तब हो सकता है, क्योंकि उसमें 66 सागर तो वेदक के हो गए और क्षायिक उसने अंत में किया, वो ये बड़ी हाँ बड़ा भाव नहीं ले सकते, बहुत नहीं बढ़ा सकते उसको। देखो 181 पृष्ठ पर वो समय सम्मा दिट्ठी सम्मा मिच्छा दिट्ठी के विचिरम कालाद होती जी उपशम समय दृष्टि व सम्यक मिथ्या दृष्टि कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है क्योंकि दोनों के लिए काल की प्ररूपना एक ही है, इसलिए दोनों को एक साथ लिया जगन्य के लिए, उत्कृष्ट के लिए उत्कृष्ट इसमें अंतर्मूर्त रहेगा, उपशम समय दृष्टि भी उपशम अंतर्मूर्त में, जगन्य न अंतमूर्तम जगन्य से अंतर्मूर्त काल तक जी उपशम समय दृष्टि व सम्यक मिथ्या दृष्टि रहते हैं। अब उसको समझाएंगे क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव के प्रथम सम्यक्त को प्राप्त कर प्रथमोपशम सम्यक्त के काल में छह आवली शेष रहने पर सासादन गुण स्थान में जाने पर उपशम सम्यक्त्व का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त पाया जाता है, यानी उपशम काल में उपशम सम्यक्त्व के काल में से छह आवली और घटा देना। इसी प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टि का भी जघन्य काल कहना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि मिथ्यात्व से या वेदक सम्यक्त्व से उपशम में से नहीं आ सकता। औपशमिक सम्यक्त्व पूरा होने के बाद तीसरे में आ सकता है, औपशमिक के काल में तीसरे में नहीं जा सकता, क्योंकि वहां तो सारे तीनों ही जो है प्रकृतियां उपशमित है। मिथ्यात्व से या वेदक सम्यक्त्व से सम्यक मिथ्यात्व में जाकर वह जघन्य काल वहां रहकर अन्य गुणस्थान में जाने पर सम्यक मिथ्यात्व का अंतर्मूर्त मात्र जघन्य काल पाया जाता है, ऐसा कहना चाहिए। पहले हमने ये बात पढ़ी है तीसरे का जघन्य काल कब होगा, पहले से तीसरे में आकर चौथे में जाने वाले के, या चौथे से तीसरे में आकर पहले में जाने वाले के, क्योंकि विशुद्धि से तीसरा आया और फिर और विशुद्धि होकर चौथे में गया, वहां जघन्य काल हो सकता है, या चौथे से संकलेश के कारण तीसरे में और वहां से और संकलेश के कारण मिथ्यात्व में गया, वो काल उसका कम हो सकता है। पहले से तीसरे में आकर वापस पहले में जाने वाले का काल बड़ा होगा। ख्याल में 182 पृष्ठ पर आते
अभिधिपति ज्ञानी का साधिक चाषक सागर देखा, तो अभी वो जो साइड करके एक भाव और करेगा तो अभिधिपति ज्ञानी का काल बढ़ जाएगा ना,
बढ़ जाएगा। वही तो बताया चार पूर्व कोटि और छासर सागर, उसी का तो काल बताया
अभी भी बहुत ही ज्ञान।
हाँ, उससे ज्यादा नहीं होगा, अभी उसको कैसे भी एडजस्ट करो आप, ये सूत्र का वचन। हाँ, ये लिमिट तभी तो बता देते हैं ना, एग्जैक्ट जो संख्या बताई है उससे से ये बात सिद्ध हो जाती है, उसमें हमारा कोई तर्क नहीं चलता है। अब उक्कस्येन अंतोमुहूर्तम्, उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त काल तक जी उपशम सम्यक दृष्टि व सम्यक मिथ्या दृष्टि रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। शासन सम्माइट्ठी केवचिरम कालादो होती, वो कलादो हुआ, कालादो करो। जीव सासादन सम्यक दृष्टि कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। जहन्येन एय समो, जघन्य से एक समय तक जीव सासादन समय दृष्टि रहते हैं, एक समय के बाद क्या होता है उनका, मिथ्यात्व में चले जाते हैं। एक समय कब होगा, जब उपशम के काल में एक समय बाकी है तब अनंतानुबंधी का उदय आ गया। उपशम का काल ऐसे भी समाप्त तो होने वाला था, परंतु एक समय पहले अनंतानुबंधी उदय में आया, तो एक समय के लिए सासादन। दूसरे समय में उपशम का काल पूरा होता है तो सासादन तो उदय में आ ही गया, मिथ्यात्व का भी उदय चालू हो जाता है। तो क्योंकि उपशम सम्यक्त के काल में एक समय शेष रहने पर सासादन, सासादान हुआ गुणस्थान में जाने वाले जीव के सासादन गुणस्थान का एक समय काल पाया जाता है। एक समय से प्रारंभ कर अधिक से अधिक छह अवलियों तक जितना उपशम सम्यक्त का काल शेष रहता है, शेष की बात है, यानी उपशम का काल अभी छह अवली बाकी है, तब जाके अर्लीएस्ट उसका उदय आ सकता है अनंतानुबंधी का, यानी जीव सासादन में जा सकता है, उसके पहले नहीं। उतने ही सासादन गुणस्थान काल के विकल्प होते, विकल्प यानी जुदे जुदे विधे, एक समय, दो समय, दस समय, हजार समय, लाख समय, छह अवली असंख्यात समय है उसमें, एक अवली में। फिर शंका, जो जीव उपशम सम्यक्त्व के संपूर्ण काल तक उपशम सम्यक्त्व में रहा वह सासादन गुणस्थान में नहीं जाता, ये कैसे जाना, प्रश्न क्या है। उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा होने पर सासादन में भेजो ना, तो उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा हुआ, अभी तीन प्रकृतियों में से किसी एक का उदय होगा। अब मिथ्या सास अनंतानुबंधी का होगा तो उसके साथ साथ मिथ्यात्व का भी हो ही जाएगा, तो जीव डायरेक्ट पहले में चला जाएगा, या सम्यक मिथ्यात्व के उदय में होने पर डायरेक्ट तीसरे में जाएगा। सम्यक प्रकृति का उदय चलता रहा तो उसका जो गुणस्थान है वही चलता रहेगा, चौथे वाला चौथे में, पांचवे वाला पांचवे में, इस तरह। तो ये शंका पूछी क्यों नहीं जाता हुँ? या कैसे जाना? समाधान, प्रस्तुत सूत्र से ही तथा आचार्य परंपरागत उपदेश से पूर्वोक्त बात जानी जाती है। उपकसेन छावलियाओ, उत्कृष्ट से छह अवली काल तक जीव सासाधन समय दृष्टि रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। मिच्छा दिट्ठी मदि अन्नानी भंगो, पहले उन्होंने सम्यक दृष्टि इन जनरल बताया, फिर औपचारिक वेदक शायक की बात बताई, फिर सासाधन वाले की बताई, सॉरी मिथ्या दृष्टि का काल और इनका काल इकट्ठा बता दिया। मिथ्या दृष्टि का नहीं, औपचारिक सम्यक्त्व का और तीसरे गुणस्थान का, जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। अब सम्यक्त्व मार्गणा में कौन सी प्ररूपना बाकी रही, सासाधन की भी बताई, अब मिथ्या दृष्टि की बात रह गई। मिच्छा दिट्ठी मदि अन्नानी भंगो, मिथ्या दृष्टि जीवों की काल प्ररूपणा मति अज्ञानी जीवों के समान है। तो मति अज्ञानी में हमने तीन विकल्प देखे थे, एक अनादि अनंत, एक अनादि शांत और साधी शांत। यहाँ लिखा है देखो, जिस प्रकार मति अज्ञानी जीव के अनादि अनंत, अनादि शांत और साधी शांत ये तीन विकल्प बतलाए गए, उसी प्रकार इस मिथ्यादृष्टि जीव के भी कहना चाहिए। जिस प्रकार साधी शांत अज्ञान का जघन्य काल अंतर्मूर्त, वहां ज्ञान मार्गणा में बताए थे मति अज्ञानी, और उत्कृष्ट काल उपार्ध, उपार्ध ने उपायने नजदीक यानी कुछ कम, अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण बतलाया गया है, उसी प्रकार मिथ्यात्व का भी कहना चाहिए। जब मिथ्या दृष्टि जीवों की सम्यक्त्व की अपेक्षा जब मिथ्या दृष्टि कहेंगे तो गुणस्थान कौन सा हा? पहला, मिथ्या दृष्टि का गुणस्थान कौन सा? पहला पहला हाँ। और मति अज्ञानियों का गुणस्थान पहला और दूसरा, तीसरा नहीं, तीसरे को मिश्र ज्ञान कहते हैं। यानी कौन सी अपेक्षा से कौन से भेद होते हैं उसको देखना है। अब संगी मार्गणा की बात करेंगे। सन्नियानुवादेन सन्नी केवचिरम कालादो होती, संगी मार्गणानुसार जीव कितने काल तक संगी रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। अब संगी में भी अपर्याप्त तो होते हैं ना, संगी पंचेन्द्रिय में भी लब्धि अपर्याप्त होते हैं, तो वहां कहेंगे जहन्येन खुद्दा भव ग्रहणम, जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल तक जीव संगी रहते हैं, क्योंकि असंगी जीवों में से निकलकर, क्योंकि उसको संगीपना का काल मिनिमम करना है ना, और संगी कब शुरू होगा, जब असंगी से संगी में आएगा तो वो संगीपना चालू हो गया उसका। तो असंगी जीवों में से निकलकर यानी मरकर संगी अपर्याप्त को में उत्पन्न होकर क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल तक रहकर, ये पहले बहुत बार उन्होंने बात बताई थी कि कदलीघात से मरने वाले की बात है ये, लब्धि अपर्याप्त को में कदलीघात से मरकर जो मिनिमम उसका जीवनी आयु है उसको यहाँ क्षुद्र भव कहते हैं। पुनः असंगी भाव को प्राप्त हुई चुके, ये नक्की करना है पहले और बाद में असंगी रखना उसको, सूत्रोक्त काल पाया जाता है। उक्कसेन सागरोपम सदपुधत्तम, उत्कृष्ट से सौ सागरोपम पृथक्व प्रमाण काल तक जीव संगी रहते हैं, पंचेन्द्रियों में भी यही प्ररूपणा की थी उन्होंने, सौ सागर पृथक संगी पंचेन्द्रिय में भी ऐसे ही, वो पृथक्व का प्रमाण थोड़ा जुदा होगा, क्योंकि असंगी जीवों में से निकलकर संगियों में उत्पन्न हो वहीं पर सौ सागरोपम पृथक्व प्रमाण काल तक परिभ्रमण करके संगीपने से निकलने वाले जीव के संगीत्व का सौ सागरोपम पृथक्व प्रमाण उत्कृष्ट काल पाया जाता है। करीबन 900 सागर उन्होंने पहले बताया था, ये पृथक्व शब्द आता है एग्जैक्ट, उनके पंचेन्द्रिय के लिए भी वही 100 सागर पृथक्व ही कहा था उन्होंने। असन्य केवल चिरम काला दो होंती, एक काला दो के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए, काला दो ने काला दो होंती। जीव कितने काल तक असंगी रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। इसमें भी जघन्य और उत्कृष्ट कहेंगे, असंगी कहें से वो एकेंद्रिय से असंगी तक के सभी भव गिनना। उसमें जघन्य न खुद्दा भव ग्रहणम, जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल तक जीव असंगी रहते हैं। ये फुल स्टॉप नहीं चाहिए, ये सॉरी प्रश्न नहीं चाहिए, फुल स्टॉप चाहिए। यह सूत्र भी सुगम है। उपकसेन अनंत कालम असंख्यज पोगल परियट्टम, उत्कृष्ट से अनंत काल तक जीव असंगी रहते हैं, जो अनंत काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के बराबर है। ऐसा नहीं कहा उन्होंने असंगी रहते कि असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के बाद फिर त्रस हुआ असंगी रहा और फिर दूसरी बार असंख्यात पुद्गल परिवर्तन रहा, ऐसा नहीं। असंख्यात पुद्गल परिवर्तन उसका जो यथायोग्य प्रमाण है अवलिका असंख्यात भाग वाला, यह सूत्र भी सुगम है। अब आहार मार्गणा, आहारणुवादेन आहारा केव चिरम काला दहोती, आहार मार्गणानुसार जीव आहारक कितने काल तक रहते हैं। आहारक का अर्थ क्या है, अनाहारक में से उसको आहारक बनाना है। तो कितने काल तक वो मिनिमम रहेगा आहारक, तीन समय कम क्षुद्र हो, क्योंकि क्षुद्र हो छोटी छोटी छोटा काल है। आहारक यानी शरीर के परमाणु ग्रहण तो वो भी करता है, परंतु वो कौन सा, वो सूक्ष्म जीव लेना तीन मोड़े सही जाने वाला, उसकी आयु में से तीन समय वहां पर भी कट हो गए, उसके लिए वो अनाहारक था, बाद में आहारक हुआ, तो तीन समय कम क्षुद्र भव ग्रहण किया और बाद में मरकर मोड़ सहित गया अन्यत्र। देखो अब यहाँ बताएंगे आहार मार्गणानुसार जो आहारक कितने काल तक रहते, यह सूत्र भी सुगम है। जहनेन खुद्दा भव गणम ती समय उणयम, जघन्य से तीन समय से हीन क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल तक जीव आहारक रहते। समझ में आया क्यों कहा ऐसा, आहारक का अर्थ क्या है, शरीर के परमाणु ले रहा है। वहां जाने के पहले भी विग्रह गति वाला था मोड़ वाला, बाद में भी मोड़ वाला, तीन मोड़ वाले से जाएगा तो तीन समय आयु में से मिनिमम कहेंगे महारक पने के, क्योंकि तीन मोड़े लेकर सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों में उत्पन्न हो चौथे समय में आहारक होकर, ये सूक्ष्म एकेंद्रीय की बात है ना, नहीं तो त्रसनाली वाला वहीं पर कहीं जाना है उसको तो दो मोड़े में काम चल जाता है। हाँ, कदली घात यानी क्षुद्र भव में हमेशा कदली घात वाला ही लेते हैं। परसों बात आई थी ना, क्षुद्र भव जब जब गिनेंगे तभी कदली घात वाला ही होता है, यानी वो तो हाँ, जहाँ क्षुद्र सभी का होता है ऐसा नहीं है, लब्धि अपर्याप्तों की मिनिमम और मैक्सिमम के बहुत सारे वेरिएशन है। उसमें से जो बंधनीय जो मिनिमम थी उसमें नहीं, जो मिनिमम जो बन सकती है उससे भी थोड़ी अधिक आयु वाला कदली घात करके जो मिनिमम बन सकती है उससे भी छोटी आयु करता है, तब ये कदली घात से ये हो जाता है। वो बात आई थी ना, मैं जरा पेज नंबर बता दूं, क्षुद्र भव में वो तो कदली घात की बात लेना है। कहाँ आई थी बात ये, किसमें आई थी वो, पेज नंबर 124, 126 और 136 तीन बार आई थी। 124 निकालो, देखो पहला ही पैराग्राफ पहली लाइन से, किन्हीं भी अविवक्षित पर्यायों से आकर पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्तकों में उत्पन्न होकर, यह पंचेंद्रिय की बात है, इसलिए सर्व जघन्य काल से बुज्जमान आयु को कदली घात से नष्ट करके क्षुद्र भव ग्रहण काल प्रमाण काल तक रहकर, यानी वो कदली घात करने के लिए भी छोटा काल, छोटे अंतर्मुहूर्त में कर दिया कदली घात, यानी कदली घात करने के लिए जो काल लगता है वो भी छोटा लिया, रहकर निकल जाने वाले जीव के सूत्रोक्त काल पाया जाता है। यही बात 126 पेज पर भी अन्य इसलिए लिया था उन्होंने, मनुष्यों के लिए मनुष्य क्षुद्र भव की बात 23 नंबर के सूत्र का अर्थ में, वह अन्य पर्याय से अपर्याप्त मनुष्य में उत्पन्न होकर कदली घात से भुज्यमान आयु के घात द्वारा क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल तक रहकर वगैरह वगैरह 136 पेज पर, यानी अलग अलग जो मार्गणा है ना उसमें जहां जहां लब्धि अपर्याप्त की बात है, एक इंद्रिय की बात है, देखो क्षुद्र भवन की, कि अन्य इंद्रियों वालों में से एक इंद्रिय में आया कदली घात से घाती तक क्षुद्र भव ग्रहण, ये क्षुद्र भव ग्रहण का काल सबके लिए समान है, वो भी बात आती है, यानी उसके बाद भी बहुत बार आई है बात, ये क्षुद्र भव में इसको कहीं लेना, घात के द्वारा जिसने और घटाया है ऐसा जीव लेना, पूर्व कोटि आपका प्रश्न है, पूर्व कोटि आयु वाले का कदली घात होता है, होता है किसी का भी हो सकता है, अपर्याप्त अवस्था में कैसे होगा, पूर्व कोटि वाले पर्याप्त जीव है, उनका अगर कदली घात होना है तो छहों पर्याप्ति पूरी हो जाएगी, फिर एक अंतर्मुत रुकेगा, बाद में उसका कदली घात हो सकता है, अनेक पर्याप्त जीवों का कदली घात पर्याप्ति पूरी होने के पश्चात ही होता है, अपर्याप्त अवस्था में नहीं, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में किसी का भी कदली घात नहीं होता, ये लब्धि अपर्याप्त जीवों का भी कदली घात होना है, उसके बाद आयु बांधना है, फिर शेष में मरना है, वो सब उसमें आ जाएगा, उनके भी 2/3 आयु बीतने पर ही हो जाएगा वो कदली घात भी। हाँ देखो अभी हम कहाँ थे, 184, हाँ यही पर है, वो तीन मोड़े लेकर की बात थी ना, 184 पेज पर नीचे का पैराग्राफ, तीन मोड़े लेकर सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों में उत्पन्न हो चौथे समय में आहारक होकर, या आहारक बनाने उसको, इसलिए भुज्यमान आयु को कदली घास से छिन्न करके अंत में विग्रह करके निकलने वाले जीव के, क्योंकि आहारक से अनाहारक बनाना है फिर उसको, इसलिए फिर दोबारा विग्रह मोड़े से, तीन समय कम क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण आहारक काल पाया जाता है, यानी मैंने बताया ना ये तो बहुत बार आई थी क्षुद्र भव की बात, अब 185 पृष्ठ पर आते हैं, उपकस्य न अंगुलस्य असंखेज्यदि भागो असंखेज्या संखेज्याओ ओसप्पिनी उत्सप्पिनियो, उत्कृष्ट से असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल तक जीव आहारक रहते हैं, जो काल अंगुल के असंख्यातवे भाग के बराबर है, क्योंकि यानी जो अंगुल कहते हैं वो तो प्रदेशों का माप है, उसको समयों में कन्वर्ट करेंगे तो इतना हो जाता है, विग्रह करके आहारक हो अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण असंख्याता संख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी काल मात्र परिभ्रमण कर विग्रह करने वाले जीव के सूत्रोक्त काल पाया जाता है। उसका अर्थ क्या है, देखो पहली बार जब उत्पन्न आहारक बना ना तो उसके पहले मोड़ सहित आया था, उसने आहारक हो गया, अभी जब जब मरा तब तब रुजुगति से ही अन्य भव में गया, रुजुगति से ना एक समय में पहुंचा वो, बीच में उसने मोड़ नहीं लिया, तो बीच में मोड़ नहीं लिया तो कहाँ जाता होगा, ऊपर ऊपर ही जाता होगा, कौन सी दिशा में जा सकता है एक समय में, ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर छह दिशा में जा सकता है। विग्रह गति में छह दिशाओं में जाने का नियम है, जिस ओर उसका जहां की आयु बंधी है, परंतु वो बिना मोड़ के वहां पहुंच गए, बस इतना ही लेना है। तो इतने लंबे काल तक हो जाएगा। तो ये विग्रह पहले ऊपर जाता है ऊर्ध्वगमन से, बाद में नीचे आता है, ये कथन इसमें झूठ ठहरता है ना। वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव आठों ही कर्मों का नाश होने पर प्रकट होता है, उसको प्रतिजीवी गुण कहा है। अब अनाहारा केव चिरम कालादो होती, जीव अनाहारक कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन एय समो, वहां जहन्नेन गसमो हुआ है, एय करो उसको, और प्रिंट भी बराबर नहीं है। जघन्य से एक समय तक जीव अनाहारक रहते हैं, यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि एक मोड़ा लेने वाला एक समय तक अनाहारक। उक्कसेन तिन्नी समया, उत्कृष्ट से तीन समय तक जीव अनाहारक रहते हैं। ये दो प्रकार से हो सकता है, देखो, क्योंकि समुद्घात करने वाले संयोग केवली व तीन विग्रह करने वाले जीव के अनाहरपने का तीन समय प्रमाण पाया जाता है। उसके पहुंचने के लिए चार समय लगते हैं, पर उसके मोड़े है तीन, तो तीन समय तक उसको कारमान का युग हुआ अनाहारक रहता है। उक्कस से तीन, ये हो गया अंतमुहूर्तम, या उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त काल तक जीव अनाहारक रहते, वो या शब्द पहले ले लेना, क्योंकि अयोगी केवली के अनाहारक का अंतर्मुहूर्त काल पाया जाता है। ये तो मार्गणा की अपेक्षा अगर कहेंगे तो एक्चुअली यहाँ बंधकों की प्ररूपणा हो रही है। हा? तो शंकाकार पूछ रहे, यह काल प्ररूपणा बंधक जीवों की अपेक्षा की गई है, किंतु अयोगी भगवान तो बंधक नहीं होते, क्योंकि उनके कर्मों के आश्रय का अभाव है। आश्रय कौन कौन से है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, सभी मिट गए उसके, तो बंध भी मिट गया। और अन्यत्र कहीं अनाहारी जीव का अंतर्मूर्त प्रमाण काल पाया नहीं जाता, अतएव यह अनाहारी का अंतर्मूर्त प्रमाण काल घटित नहीं होता, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि चार अघातिक कर्मों के पुद्गल स्कंधों का और लोक प्रमाण जीव प्रदेशों का परस्पर बंधन देखकर ये नया बंध नहीं हो रहा है, परंतु वहां बंधे हुए पड़े हैं। ये जीव प्रदेश कितने हैं? लोक प्रमाण असंख्यात है, और वहां चार घाती कर्म भी, अघाती कर्म भी पड़े हैं, बंधे हुए अवस्था में पड़े हैं। उनका बंधन देखकर अयोगी जिनों के भी बंधक भाव स्वीकार किया गया है, ऐसा मानने पर मनुष्य अबंधक भी होते इस सूत्र के साथ विरोध भी नहीं आता, क्योंकि जब गति मार्गणा में देखा था मनुष्य बंधक भी अबंधक भी है, तो वहां चौदह की अपेक्षा अबंधक कहा था, तो कहते उस सूत्र के साथ विरोध आ जाएगा, नहीं, क्योंकि उक्त सूत्र में योग और कषाय आदि से उत्पन्न होने वाले नवीन बंध के अभाव की अपेक्षा से अयोगियों के अबंधक होने का उपदेश किया गया है। अन्यत्र तो इसको नहीं लिया, परंतु यहाँ वो अपेक्षा लगा सकते है, ये बात कहना है। यानी अगर सूत्र में है तो किस अपेक्षा लगाई होगी? तो हमेशा तो जो ऐसा भी कहना है कि अयोगी के भी ऐसा अनाहारकपना है और वो अंतर्मूर्त तक रहता है, बस इतनी बात है। और इस सूत्र में कोई विरोध नहीं आता है बंधकों के साथ, क्योंकि वहां तो बंधन पड़ा है ऑलरेडी। हाँ, अन्य मार्गणों उसमें उसको अबंधक तरीके से स्वीकार किया था। इस तरह एक जीव की अपेक्षा काल नामक अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। अभी तक हमने क्या क्या देखे बंधकों में? हाँ, स्वामित्व और काल। हाँ, कितने अनुयोग द्वार देखे थे? 11। और पहले उन्होंने वो तो केवल उसकी प्ररूपणा कर दी थी। हाँ, एक देखो देखो यहाँ बात कितने 10-11 पेज पर कहीं तो आई थी ना, 25 पर आई थी ना। बंधक सत प्ररूपणा पहले हो गई थी, यानी प्रत्येक मार्गणा के अनुसार जीव बंधक है, बंधक है, बंधक भाई, इतनी बात बताई थी। और फिर उसमें अनुयोग द्वार बताए थे, ये एक जीव की अपेक्षा स्वामी तो, एक जीव की अपेक्षा काल, अब एक जीव की अपेक्षा अंतर चलेगा। हाँ, देखो चौदह में भी और तेरहवे में केवली समुद्र क्या है, प्रतर, लोकपुराण और प्रतर, तीन समय तक। हाँ, विग्रह गति में, केवली समुद्रात में और अयोगी पूरे ही, वो तो अनाहारक ही है। तेरहवे के अंत तक ही वो आहारक है, शरीर के परमाणु का ग्रहण रुक जाता है। क्यों रुकता है? हाँ, योग क्यों, कौन सा कर्म उसमें निमित्त है? औदारिक शरीर नाम कर्म और अंगोपांग नाम कर्म का उदय रुक गया है, तेरहवे के अंत तक है। शरीर के परमाणु की बात है ना, कारमान की बात नहीं यहाँ पर। हाँ, देखो ये तीनों ही तेजस शरीर नाम कर्म, कारमान शरीर नाम कर्म, औदारिक शरीर नाम कर्म, तीनों का उदय मिट जाता है। अब देखो, एक जीवेण अंतरानुगमो, एक जीव की अपेक्षा अंतर का क्या अर्थ होता है? देखिए किसी मार्गणा की बात है, उसमें से वो अन्य तरह चला जाए और फिर उसमें लौट आएगा तो उसको कहेंगे वो एक जीव की अपेक्षा अंतर। एक जीवेण अंतरानुगमेन गदीयानुवादेन निरय गदीये नेरयाणम अंतरम केवचिरम कालादो हो दी। एक जीव की अपेक्षा अंतरानुगम से गति मार्गानुसार नरक गति में नारकी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? देखो शंकाकार ये पूछ रहे हैं, यहाँ गुणस्थानों में अंतर क्यों नहीं बताया जिसको हम ओघ से कहते हैं? यहाँ डायरेक्ट नरक गति में नारकियों का अंतर, एक जीव नरक गति में गया है, अब उसका अंतर कितना पड़ेगा? नरक गति का अंतर है, वो नरक गति से निकला और फिर नरक गति में गया, यानी छोटी आयु बांधकर बाहर आया और फिर नरक में गया, ये लेना है उसका। समझ में आई बात? तो यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहे, देखो यहाँ मूल ओघ विषयक अर्थात गुणस्थानों की अपेक्षा अंतर संबंधी पृच्छा क्यों नहीं की गई? गुणस्थानों का अंतर, जैसे मिथ्या तो गुणस्थान का अंतर, सासादन गुणस्थान का अंतर, तीसरे का चौथे का अंतर, ऐसा क्यों नहीं कहा, ये कह रहे। उसका समाधान नहीं, क्योंकि मूलोग संबंधी काल प्ररूपणा का अभाव होने से उक्त प्ररूपणा नहीं की गई है। फिर पूछते हैं मूलोग संबंधी काल क्यों नहीं बतलाया गया? उसका समाधान, क्योंकि बिना कहे उसकी सिद्धि हो जाती है। जैसे हमारे मार्गणा में कहेंगे वो सम्यक्तो मार्गणा में मिथ्यात्व का अंतर, तो पहले गुणस्थान का अंतर हो जाएगा, सासादन का अंतर वो दूसरे गुणस्थान का अंतर हो जाता है, ख्याल में है? मिश्र का अंतर वो तीसरे गुणस्थान का अंतर, वो तो सिद्धि हो ही जाने वाली है उससे। कितने काल तक ऐसा कहने पर, क्या एक समय अंतर होता है, क्या दो समय, क्या तीन समय, इस प्रकार अनंत समयों तक की अंतर संबंधी पृच्छा की गई है, शेष सूत्रार्थ सुगम है। मैंने उसका जघन्य और उत्कृष्ट अंतर पूछेंगे। ये तो प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर अब देखते हैं। जघन्य न अंतोमोत्तम, जघन्य से नरक गति में नारकी जीवों का अंतर अंतर्मूर्त काल तक होता है। यानी इनको प्रश्न क्या पूछना था कि नरक गति में गुणस्थानों का अंतर क्यों नहीं पूछा, तो कहते उसकी बात यहाँ नहीं है, यहाँ नरक गति का इटसेल्फ अंतर पूछ रहे हैं। बाहर आया तो अंतर मुहूर्त में नरक में गया, यानी वहां से मनुष्य तीर पर्याप्त का भाव करके चला गया, अपर्याप्त नहीं, अपर्याप्त नरक गति नहीं बांध सकता, नरकायु नहीं बांध सकता। पर्याप्त का छोटा भाव अंतर्मूर्त का हो सकता है, उसकी बात लेना। देखो क्योंकि ये अंतर्मूर्त बता रहे कैसे कि नरक से निकलकर नार के समूर्छन में उत्पन्न ही नहीं होते, गर्भ में ही गर्भज ही होते हैं, संगी पंचेंद्रिय गर्भज ही होते हैं। तो नरक से निकलकर गर्भोपक्रांतिक लिखा है ना, तीर्यंच जीवों में अथवा मनुष्यों में उत्पन्न हो, सबसे कम आयु के भीतर नरकायु को बांध, नहीं गर्भ में ही बांध सकता है। जैसे हमने देखा ना, 2 महीने का वो गर्भ भी वो तो उसमें देव में भी जा, हाँ उसी में मरण कर पुनः नरकों में उत्पन्न हुए नारकी जीव के नरक गति में जघन्य से अंतर्मूर्त प्रमाण अंतर पाया जाता है। यानी अंतर्मूर्त में नरकायु बांध दी उसने मनुष्य में, गर्भ में क्या करना है, क्या कुछ करने से थोड़ा ही होता है, करने से कुछ करने से हाँ परिणाम होते हैं, परिणाम संकलेश विशुद्ध होते हैं। पर्याप्त होने पर 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त होने के बाद और उतनी आयु बांध कर आया है उसने। नरक गति का अंतर केवल तीर्यंच में नहीं लिया, मनुष्य में भी उसको भी लिया। अब उपकसेन अनंत कालम असंख्य ज पोगल परियट्टम, क्योंकि नरक से निकला है मनुष्य तीर्यंच हुआ, फिर कालांतर से एकेंद्री में पहुंच गया, तो नरकायु बांध ही नहीं लंबे काल तक उसने, ये हो सकता है ना। उत्कृष्ट से अनंत काल तक नरक गति से नारकी जीवों का अंतर होता है, जो अनंत काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। हो सकता है ना त्रस की शुरुआत में वो नरक में जाके आया, फिर तीर्यंच देव और मनुष्य में घूमता रहा और फिर बाद में पहुंचा वहां पर एक इंद्रियों में और वहां इतना काल बिताया, उसके बाद वो नरक में जाएगा। क्योंकि नारकी जीव के नरक से निकलकर अविवक्षित गतियों में आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण पुद्गल परिवर्तन काल तक परिभ्रमण करके पुनः नरकों में उत्पन्न होने पर सूत्रोक्त अंतर का प्रमाण पाया जाता है। एवं सत्तसु पुढ़वीसु नेरैया, इस प्रकार 7 पृथ्वियों में नारकी जीवों का अंतर होता है। यानी ये जघन्य और उत्कृष्ट जो बताया अंतर, वो तो किसी भी पृथ्वी के बारे में यही प्रमाण लागू हो जाता है। सूत्र में जो नेरैया ऐसा कहने पर नेरैयाणम ग्रहण करना चाहिए, 7 ही पृथ्वियों में नारकी जीवों के गर्भोपक्रांतिक पर्याप्त तीर्यंचों और मनुष्यों में उत्पन्न होकर जघन्य से अंतर्मूर्त काल रहकर विवक्षित नरकों में उत्पन्न हुए जीव का अंतरकाल सदृश ही होता है, ऐसा प्रस्तुत सूत्र के द्वारा कहा गया है। बड़ा अंतर्मूर्त होगा क्योंकि वहां तो पंचेंद्रिय में जो जाएगा सिंह आदि, उसमें से फिर उसको समूर्छन मत्स्य होना पड़ेगा और फिर वहां से आएगा यहाँ पर 7वें नरक में, उसकी अपेक्षा लेना। उसके 2 भव होते हैं, 7वें से निकलकर 2 भव होने चाहिए उसके, वो भी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त के कर सकते हैं। तिरिक्ख गदीय तिरिक्खाणम अंतरम केवचिरम कालादो होती, तिर्यंच गति से तीर्यंच जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, यह सूत्र सुगम है। यानी वो तीर्यंच में न रहे, अन्य 3 गतियों में रहे, ऐसा लेना है। जघन्येन खुद्दा भव ग्रहणम, जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल तक तीर्यंच जीवों का तीर्यंच गति से अंतर होता है। यानी वो क्षुद्र भव मनुष्य का लेना है बीच में, क्योंकि तीर्यंच जीवों में से निकलकर मनुष्यों में उत्पन्न हो, कदली घात युक्त क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल तक रहकर। ये कदली घात वाली बात हर बार आती है, कितनी बार आ गई अभी तक? पुनः तिर्यंचों में उत्पन्न हुए जीव के क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण अंतर पाया जाता है। उक्कसेन सागरोम सदबुधत्तम, उत्कृष्ट से सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण काल तक तिर्यंच जीवों का तिर्यंच गति से अंतर पाया जाता है। इसको कहते हैं तिर्यंच आयु किसी ने नहीं बांधी, प्रकृति बंध का अंतर में भी यह बात है। किसी जीव ने तिर्यंच आयु बांधी ही नहीं तो लंबे काल तक कितने काल तक हो सकता है उसका अंतर? तो ये सागरोपम शतपृथक्त्व यानी करीबन 900 सागर तक। तो क्या कहा जाएगा मनुष्य, देव और नारकी? यानी हर बार देव मनुष्य देव नारकी होता रहे, बीच में मनुष्य तो होना पड़ेगा ना। तो मनुष्य तो कितने भव हो गए मनुष्य के, ख्याल में आती बात? ये इससे सिद्ध होता है मनुष्यों के अधिक भव हो सकते हैं। हाँ, 2000 सागर में अगर वो तिर्यंच आयु बांधे ही नहीं, 2000 सागर में ये मनुष्य के भव ज्यादा हो सकते हैं, लेना है ना। यानी तिर्यंच गति का अंतर, उसको कहो या तिर्यंच आयु बांधने का अंतर कहो प्रकृति बंध में, वो एक ही बात है। उत्कृष्ट से सौ सागर पृथक, यानी इसे मनुष्य के अधिक भव हो सकते ही सिद्ध होता है। हाँ, 48 से ज्यादा। हाँ, वो तो क्योंकि अभी सबके वो फिट बैठा है ना, 48 ही होते हैं, और 48 होते ही ऐसा भी कहने वाले हैं। हाँ। देखो, क्योंकि तिर्यंच जीव के तिर्यंचों में से निकलकर शेष गतियों में सौ सागरोपम पृथक्त्व काल से ऊपर ठहरने का अभाव है, यानी वो नियम से इतने काल के बाद तिर्यंच होगा ही। अब यही रुकेंगे हम। एक ही जीव की अपेक्षा, यानी वो तिर्यंच में से निकला और सौ सागर पृथक्त्व तक देव नारकी और मनुष्यों में घूमता रहा, बाद में वो तिर्यंच आयु बांधेगा, तिर्यंच में चला जाएगा। हाँ, इसी से सिद्ध होता है, क्योंकि 900 सागर तक कहाँ रहेगा वह पर्टिकुलर जीव, या देव में या मनुष्य में या नारकी में, और बीच में उसको देव से नरक में नहीं जा सकता, नरक से देव में नहीं जा सकता, बीच में मनुष्य होना है। ये पुरुष वेद में भी ये घटित किया था उन्होंने। पुरुष वेदी की उत्कृष्ट कितनी है तो 100 सागर पृथक, उसमें अगर वो तिर्यंच आयु न बांधे, पुरुष वेदी अगर तिर्यंच आयु न बांधे तो भी उतनी उत्कृष्ट, यानी पहला भाव उसने तिर्यंच का किया और लास्ट में तिर्यंच का किया, तो बीच में केवल मनुष्य और देव की करे। हाँ, वहां पर भी ऐसे, और नीचे नीचे के देवों के आयु उसमें अधिक बार जन्म लेगा, तो छोटी 10,000 वर्ष की और थोड़ी कितनी संख्यात वर्षों की आयु करके मनुष्य में आया फिर देव में चला गया, ये ज्यादा बार हो सकता है उसका, क्योंकि ऊपर के देवों में अधिक बार आना जाना नहीं होता, उसमें उसके नियम है कितनी बार जा सकता है लगातार के बाद। ये रुकेंगे भी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकना सदा।